الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. ساری تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کو اتنے سارے مواقع عطا فرمائے کہ وہ ان میں نیکیاں کما کے اپنی آخرت سنوار سکیں، اور موت تک یہ مہلت دی ہے اور یہ موقع کھلے رکھے ہیں. جو زندگی کے سال گزر گئے اور ان میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان دنوں کی کیا اہمیت ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تو گئے اب. مگر اب جب کہ پتہ چل گیا تو الحمدللہ. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ان دنوں کو ہم بہترین طور پہ گزاریں. جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے کل کہا تھا کہ آپ نے 3-3.5 پارے روزانہ پڑھنے ہیں، تو اگر مثلاً کوئی ایک دن نہیں پڑھتا تو دوسرے دن اس کا کام کم ہوتا ہے یا زیادہ بڑھ جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا نا. اور دوسرے دن بھی نہیں پڑھے گا تو تیسرے دن کیا ہوگا؟ 7 پارے پڑھنے پڑیں گے، اور پھر اس کے بعد بھی نہیں پڑھے گا تو 10 جمع ہو جائیں گے. اگر 8 ذی‌الحجہ پہ جا کے وہ کہے کہ ابھی تو میں نے صرف 5-10 پارے ہی پڑھے ہیں اور ابھی 20 رہتے ہیں، کبھی یہ ٹارگیٹ پورا نہیں ہو سکے گا. اسی طرح رمضان کے 30 دن بھی آپ دیکھیں، ہر روز آپ 1-1.5 پارا پڑھتے ہیں اور 27 کو الحمدللہ قرآن مکمل کرتے ہیں. مگر کوئی اگر 25-26 رمضان کو جا کے سوچے کہ ابھی میرے 20-25 پارے پڑھے ہوئے ہیں، تو کبھی مکمل نہیں کر سکے گا. ایسا ہی ہے نا. اس مثال سے میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتی ہوں. دیکھیں، یہی حال زندگی کا ہے. کسی کو اتنی زندگی ملے گی جتنے یہ 10 دن ذی‌الحجہ کے ہیں، اور کسی کو لمبی مل جائے گی تو ایسے ہی ہے جیسے 30 دن رمضان کے مل گئے. مگر دونوں میں آپ نوٹ کریں، وقت ختم ہو جاتا ہے. چاہے کسی کو لمبی عمر مل جائے، وہ بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے، اور چاہے مختصر زندگی ملے ان 10 دنوں کی طرح، وہ بھی ختم ہو جانی ہے. اب جس کے پاس مختصر وقت ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ زیادہ کام کرنا پڑے گا یا بالکل نہیں؟ زیادہ کرنا پڑے گا نا. تو وہ زیادہ تیز دوڑ لگائے گا جس کے پاس صرف 10 دن ہے. یعنی اب اس کی زندگی، یہ تو ہمیں نہیں پتا ہماری کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کب چلے جانا ہے. مگر ہر کوئی اگر یہی سمجھے کہ میرے پاس بس جیسے یہ مختصر سے ہی ٹائم ہے، جیسے یہ 10 دن ہیں، کتنے تھوڑے سے ہیں نا، ان کے اندر میں نے ٹارگیٹ پورا کرنا ہے، تو ہم دن رات لگے ہیں. تو اسی طرح یہ زندگی ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم یہی سمجھیں کہ مختصر ہے، پھر ہمیں کتنی تیز دوڑنا ہے اس میں، یعنی بہت محنت کرنی ہے. اور دوسری اس میں یہ بات ہے کہ جس کی زندگی کا 50 کا فگر کراس ہو چکا ہے نا ابھی تک، یعنی وہ 50 سے اوپر ہو گئے، تو اب وہ کتنا جی لیں گے؟ اس کی آدھی سے زائد زندگی گزر چکی ہے آلریڈی، تو اس کے تو باقی بس 10 دن ہی بچے ہیں نا. 10 دن سے مراد یہ ہے کہ مختصر ٹائم بچا ہے. وہ اس میں پھر وقت کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا. اس کی سپیڈ 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے پاس وقت کم ہے اور اس کا کام زیادہ ہے. اور جس کا ابھی رمضان چل رہا ہے، یعنی وہ ابھی جوانی میں ہے، وہ بھی آج سے کام نہیں شروع کرے گا، تو چاہے اس کے پاس ابھی بہت وقت بھی نظر آ رہا ہے، مگر گارنٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اگر بالفرض اس کو مانا کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کے پاس بہت ٹائم ہے، वो देख आया है कि मेरे पास लंबी उम्र है, मुझे अभी कुछ नहीं होना। तब भी जितनी भी लंबी उम्र हो जाए, एक दिन वो खत्म हो जानी है। एक दिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, जैसे आपका रमजान गुजर जाता है। अगर साथ साथ एक एक पारा आप नहीं पढ़ते, तो एंड में जाके अगर आप चाहें भी तो आप कभी टारगेट नहीं पूरा कर पाते। और फिर हसरत होती, हाय काश मैं पढ़ ही लेती, एक हर दिन एक पारा पढ़ना तो मुश्किल नहीं था। इसी तरह ऐसे लोग जिनको बहुत लंबी भी उम्र मिल जाए, लेकिन अगर वो अपने वक्त को साथ साथ यूटिलाइज नहीं करते, इसको नेकियों में नहीं सर्फ करते, तो वो हसरत लेके दुनिया से जाएंगे, चाहे उन्होंने 100 साल की जिंदगी क्यों ना पा ली हो। और हसरत उनको ज्यादा होगी कि हाय इतने सारे दिन मिले थे, पता नहीं मैंने क्यों नहीं कुछ किया। 10 दिन की जिंदगी वाले को भी, यानी मुख्तसर जिंदगी वाले को भी, वो भी अगर आखिरी दिन सोचे, आप मसलन 8 जिलहज्जा को सोचती हूँ कि अच्छा मैं कर ही लेती, और ये तो अब मैं इतना ज्यादा कैसे करूं, नहीं हो सकेगा, कभी भी नहीं पूरा कर सकते। ये तो साथ साथ करना था, ये वो ही टारगेट पूरा कर सकता है जो लगा रहे। बचपन में आपने भी सुनी होगी कहानी कछुए और खरगोश की, सभी को पता होगी। खरगोश क्यों हार गया था? क्योंकि उसने सोचा था कि मैं आखिर में तेज दौड़ लगा लूंगा और जीत जाऊंगा। मगर जब वो जागा तो बहुत देर हो चुकी थी, वक्त ही नहीं था। हम में भी अक्सर लोग यही सोचते हैं, आखिर में दौड़ लगा लूंगी, बुढ़ापा आएगा ना फिर कर लूंगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर करूंगी, ये जिम्मेदारियों से जरा फारिग हो जाए फिर करूंगी। और जब जागते हैं, जब वाकई फारिग होते हैं, तो इतनी देर हो चुकी होती है कि कितना भी तेज दौड़ लगा लें, कभी मंजिल को पा नहीं सकते। मैं ये इसलिए आपसे कह रही हूं कि जिंदगी का आखिरी दिन अगर आ गया, और आना ही है, या किसी के डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब आपके पास सिर्फ इतने महीने हैं, बस अब आपका टाइम खत्म है, तो उस वक्त अगर दौड़ लगाना भी चाहेंगे ना तो नहीं लगा सकेंगे। अगर जिक्र की तस्बीहां करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे, कितनी को कर लेंगे, 24 घंटे तो नहीं को कर सकता। रोजे रखना चाहेंगे भी तो नहीं रख सकेंगे, बहुत कसरत से नमाजें पढ़ना चाहेंगे भी तो नहीं पढ़ सकेंगे, नहीं कर सकता इंसान। बहुत सारी खूब खूब नेकियां करना चाहेंगे, नहीं उनमें भाग सकेंगे, कभी टारगेट नहीं पूरा हो सकेगा। जीतेगा वो ही जो चलता ही चला जाएगा, और जिसने सोचा कि मैं आखिर में दौड़ लगा लूंगा, वो कभी जीत नहीं सकेगा। तो अपनी जिंदगी में इस मिसाल से याद रखें कि हमने जिस भी फेज में हम हैं, हम जवान हैं, हम उधेड़ उम्र हैं, हम बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं, अभी से अपनी आखिरत के लिए जोड़ना शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहेंगे तो आखिर में आके ये हसरत नहीं होगी कि हाय मैं काश कुछ कर लेती, फिर ये होगा कि नहीं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ा हुआ है। आपको पता है बच्चे पहले जमाने में बच्चे, उनके पास पैसे जमा करने के लिए, शायद आज भी होता हो, उसको गल्ला कहते थे, यानी मिट्टी का एक थोड़ा सा छोटा सा एक बर्तन सा होता था, ऊपर से छोटा सा उसका मुंह होता था, उसमें वो पैसे डाला करते थे, और जब वो भर जाता था ना तो उसको तोड़ते थे, उसमें से इतने सारे ढेर पैसे निकल आते थे। यही मिसाल नेकियों की भी है, आप थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहेंगे ना तो एक दिन जब जाने का वक्त आएगा, रवानगी का टाइम आ जाएगा, फरिश्ता सर पे आके खड़ा हो जाएगा, चलो अब आपने देखा है, हमारी एक स्टूडेंट पिछले दिनों ही उनका इंतकाल हुआ, जॉब से आते हुए, उनका कोई कसूर नहीं था, ये नहीं कि उनको नहीं गाड़ी चलानी आती थी, किसी ने रेड लाइट क्रॉस की और उनकी गाड़ी को ऐसा मारा कि वो दुनिया से चली गई। अब क्या उन्होंने सोचा था कि यही मेरा आखिरी दिन है? और इस तरह के आपके सामने भी बेशुमार वाकयात होंगे, बेशुमार, जिसमें इंसान ने सोचा नहीं होता कि आज लास्ट डे है। और हमारे साथ भी कोई ऐसा हो सकता है चीज, अल्लाह तमाम लोगों को हादसा से बचाए, मगर हमें क्या पता किस वक्त आके फरिश्ता कह दे कि बस डन, घंटी बज गई, ये दो अब पर्चा वापस, अब जो लिखना था लिख चुके, अब और टाइम नहीं है। जिसको डॉक्टर कह देता है ना कि तुम्हारे पास इतने महीने हैं, इतना टाइम ही है, उसके पास शायद फिर भी कोई टाइम होता हो, शायद उसको फिर भी कोई समझ आ जाती हो, लेकिन जिसके पास अचानक मौत का फरिश्ता खड़ा हो जाए और हम नहीं जानते हम में से किसके साथ ऐसा हो जाए, वो क्या करेगा? उसके पास तो एक फिर तस्बीह करने का भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हमारे फरिश्ते आ जाते हैं तो फिर वो जरा भी कोताही नहीं करते, बस फिर चल चलाओ का वक्त होता है। और ये सारे काम जिनमें आज हम मसरूफ हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, ये सब मल्टीप्लाई विद मौत होते हैं तो जीरो हो जाते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जिनके लिए हम कहते हैं ना कि नहीं मैं बड़ी मसरूफ हूं आजकल, मेरी बड़ी ये मसरूफियत है, सोचें इस मसरूफियत की क्या वैल्यू होगी आखरत में, कुछ भी ही नहीं। सोचें कि मौत का फरिश्ता आ जाए तो इन मसरूफियात का हम क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे। इसलिए आज जरूरी है कि हम ये बात समझें कि मुझे भी इसी तरह अपने गले में नेकियां भरते चले जाना है, भरते चले जाना है, भरते चले जाना है, ताकि वो दिन जब रवानगी का हो मैं उसको तोड़ूं तो मुझे बहुत सारी नेकियां मिल जाएं, और मुझे हसरत ना रहे। और मैंने इसलिए उस गल्ले की मिसाल दी है कि उसमें पैसे नजर नहीं आया करते थे, पता ही नहीं होता था कितने जमा हो गए, जिस दिन तोड़ते थे तो पता चलता था। तो हमारी भी जिंदगी के ये नेकियों का ये जो गल्ला है इसमें हम डालते जाएं, ये भी ये गिनने का वक्त नहीं है क्या कर लिया, इसको नहीं हमने देखना, बस करते चले जाना है, तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना, कुछ तो जमा हो ही जाएगा ना। आपने देखा होगा माएँ जो हैं वो पहले वक्तों में ऐसे ही था, अब भी शायद हो इस तरह का रिवाज कि बेटियों के लिए कब से जोड़ने लगती थी उनका जहेज, जब से वो पैदा होती थी, हालांकि पता नहीं वो आउट ऑफ डेट हो जाती होंगी चीज़ें या क्या, लेकिन वो किस लिए जोड़ती थी कि चलो जब इसकी शादी का वक्त होगा तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी, सब कुछ पहले से बना होगा, थोड़ा 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 करके जोड़ती जाती थी। देखो हमें कितनी अकलें हैं दुनिया के छोटे छोटे कामों के लिए, हालांकि पता ही नहीं है इस बच्चे ने जिंदा भी रहना या नहीं, पता नहीं शादी का मौका आएगा भी या नहीं, लेकिन हम कितने सियाने हैं उसमें। मगर वो आखरत का दिन जिसके आने में कोई शक ही नहीं है, हमारा ईमान है कि हमें मौत भी आनी है, और हमारा ईमान है कि एक आखरत का दिन है, फिर भी हम लोग उसके लिए जोड़ने को जरूरी नहीं समझते, और इसको उठा के रखा हुआ है उस दिन के लिए कि हम जिस दिन जाना होगा या जिस दिन बिल्कुल रवानगी करीब होगी, जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब सर हिलने लगेगा, जब आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, जब खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी, उस वक़्त हम कुछ कर लेंगे। और तौबा को भी उस दिन के लिए उठा के रखा होता है कि तौबा भी तभी करेंगे। हम अपने आप को कितना बेवकूफ़ बनाते हैं, किसी और को नहीं बनाते, अपने आप को बना रहे हैं, किसी और से नहीं खेल रहे, अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। तो ये बड़े खूबसूरत मौके हैं जो अल्लाह ताला ने दिए, और शुक्र है जितने सुनने वाले इस वक्त सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके पास अभी ज़िंदगी है, उनके पास अभी सेहत है, उनके पास अभी सलामती है, वो अभी सांस ले रहे हैं, और वो कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आते हैं ज़िलहज्जा की तरफ। देखिए ये साल का आखिरी महीना है इस्लामिक कैलेंडर का, कमरी महीनों में ये आखिरी महीना शुमार होता है, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला जाते जाते साल में भी हमें एक लास्ट, और वो लास्ट चांस हमारा काम है कि हम इससे फ़ायदा उठा लें, कि पूरे साल के गुनाह बख्शवा लें, पूरे साल को हम एंड किस पे करें, नेकी पे, पूरे साल को हम एंड किस पे करें, तौबा इस्तग़फ़ार पे। तो पूरे साल को हम एंड करें नेकियों से, भरे हुए दिनों से। तो इन दिनों में हमें अपनी स्पीड को बहुत बढ़ा लेना है। जो काम आगे पीछे नहीं भी करते, वो भी आपने इन दिनों में नेकियों के जो काम है उनके लिए वक्त निकालना है। हो सकता है आप सबको एक कोई मौका ऐसा ना मिल रहा हो कि जिसमें आप बैठ के ही कोई खास काम करें, मगर कम से कम छोटे छोटे जो स्लॉट्स हैं उनको अवेल करें, उनको जाने ना दें, और उनमें आप यानी देखिए ना, बाज़ दफ़ा हमें घंटे नहीं मिलेंगे, 10 मिनट कहीं मिल गए, 5 मिनट कहीं मिल गए, 15 मिनट कहीं मिल गए, वो उसको 5, 10, 15 ना समझें कि इसमें क्या हो सकता है। नहीं, इसमें बड़ा कुछ हो सकता है। आप उसमें बैठ के कुरान का सफ़ा पढ़ सकते हैं, आप उसमें 2 नफल पढ़ सकते हैं, आप उसमें वुजू कर सकते हैं। तो छोटे छोटे स्लॉट्स को काम में लेकर आएं। उसमें हम इंतज़ार करते रहते हैं। मसलन आपका कंप्यूटर खुल रहा है, उसके खुलने में थोड़ी देर लगती है ना, तो उतनी देर में आप कितनी सारी तस्बीहात कर सकते हैं, इसको ज़ाया ना करें। आप चूल्हा जला रहे हैं, आप सब्जी धो रहे हैं, आप काट रहे हैं, उतनी देर ज़ुबान तो फारिग है। क्या चीज़ हमें रोकती है कि हम तस्बीहात नहीं करते? क्या चीज़ हमें रोकती है तकबीरात बयान ना करने से? ज़ुबान तो थकती ही नहीं, लेकिन उस वक़्त भी हम खामोश होते हैं। तो ज़ुबान को उस वक़्त देखिए, बातें करने से नहीं हम कभी थकते। हम किस चीज़ से थक जाते हैं? तस्बीह करने से। उस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। तो इंशाअल्लाह ताला इन दिनों में हमने बेहतरीन फ़ायदा उठाना है। याद रखिएगा, अल्लाह ताला के हाँ नेकी तुलने का अलग पैमाना है। हमारे यहाँ चीज़ें किलो वगैरह में तोली जाती हैं, ग्राम्स में तोली जाती हैं, हीरा वगैरह कैरेट्स में वो देखते हैं कि कितने कैरेट्स का है। अल्लाह के यहाँ नेकी इन पैमानों से नहीं तोली जाती कि कितने किलो नेकियाँ हैं, कितने टन गुनाह हैं, बल्कि उसके यहाँ ज़र्रों का वज़न होगा। एक एक ज़र्रा अलग अलग तोला जाएगा, एक एक जर्रे का मीज़ान में रखा जाएगा और उसका वजन होगा। मैं यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, मैं यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा कितना होता है? ज़र्रा कितना होता है बताएं? क्या कोई ज़र्रे का बता सकता है? आज उसकी डेफिनेशन करते हैं, आज उसकी डेफिनेशन करते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आज की साइंस की ज़ुबान में इसको एटम कहा जाता है कि सबसे छोटा ज़र्रा एटम है। और हदीस में क्या आता है? उस वक्त तो एटम का लोगों को नहीं पता होता था, तो हदीस में क्या आता है? जुओं के अंडे के बराबर अमल भी, जुओं के अंडे के बराबर अमल भी तुल जाना है कयामत के दिन, उसको भी तोला जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है, जिन तकबीरात को हम छोड़ देते हैं, जिनको हम सुस्ती में बेतवज्जुही की वजह से हम नहीं पढ़ते, वो क्या ऐसे ही कुछ भी नहीं है? नहीं, वो एक एक तकबीर पता नहीं कितनी भारी तुले। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते कि इनका वजन कितना होगा। ये तो 100 तकबीरात लेके डंप नहीं कर दी जाएंगी मीजान में, ऐसा नहीं होगा। एक एक जर्रा जब तुलेगा ना, तो एक एक तकबीर तुलेगी, एक एक लफ्ज तुलेगा। जो कुरान आप पढ़ रहे हैं, कल से आपकी जुबान शायद खुश्क हो चुकी हो इसको पढ़ पढ़ के, तो वो सिपारा सिपारा नहीं तुलेगा। वो कैसे तुलेगा? वो एक एक लफ्ज नहीं, एक एक हर्फ तुलेगा, एक एक हर्फ। हर एक के हालात, हर एक के मामलात, हर एक का की सिचुएशन क्या थी, हर एक की उम्र कैसी थी, हर एक की सेहत के क्या हालात थे, हर एक की मसरूफियात कैसी थी, उसके मुताबिक उसके नंबर लगेंगे। कोई फारग उल बाल है, कोई जॉबें करता है, कोई सेहत के साथ है, कोई बीमारी के साथ है, किसी के अंदर हिम्मत है, किसी में हिम्मत नहीं है, तो सबके सरकमस्टेंसेस अलग हैं। आप क्या ख्याल है, सबके नंबर एक ही लग जाने? कोई रोजे के साथ पढ़ रहा है और उसका गला खुश्क हो रहा है, और कोई रोजे के बगैर पढ़ रहा है, सबके अलग नंबर हैं सबके। तो हर एक के जर्रे जर्रे ने तुल जाना है, याद रखिए। इसलिए जर्रे जर्रे की नेकी का ख्याल करें, ये छोटी चीजें नहीं है, ये फालतू नहीं है। इस जर्रे जर्रे को संवारें, सजाएं, खुलूस से करें, मोहब्बत से करें, शौक से करें, ये फालतू नहीं है, ये तुलने हैं, ये अल्लाह के यहां बड़ा कीमती असासा है। देखें, सोने की छोटी सी पिन भी होती है ना, छोटी सी एक डली हो या एक छोटी सी एक सुई बराबर भी सोना हो ना, उसकी भी वैल्यू होती है। तो ये तो सोने से भी ज्यादा कीमती नेकियां हैं जिनका जर्रा भी तुलना है। तो इनको सर से नहीं उतारना, इनको बहुत मोहब्बत से करना है कि ये अल्लाह की बारगाह में पेश होनी है। इनको अल्लाह ने देखना है कि मेरे बंदों ने इन दिनों में मुझे खुश करने के लिए, मेरे महबूब दिनों में अपने आप को इतना हलकान किया। तो इसलिए अपनी इन नेकियों की, छोटी छोटी नेकियों की भी हिफाजत कीजिएगा, और ख़ास तौर पे इनमें गुनाहों से बचने का एहतमाम कीजिए। ये वैसे ही हुरमत वाला महीना है, जैसे कि आपको पता है कि चार इस्लामी महीने हुरमत वाले हैं, रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम। और हुरमत के दो माने हैं, यानी इनमें हराम है कत्लो गारत, खून रेजी, झगड़े, ये वो सब हराम है, जंग वगैरह हराम है। और नंबर टू ये कि ये महीने मुबारक है, मोहतरम है, एहतराम वाले हैं। तो मुतबर्रिक महीने, काबिल एहतराम महीने, जिनको अल्लाह ने एहतराम दिया है ना, हमने नहीं बनाई, ये अल्लाह ने इनको हुरमत दी है कि ये एहतराम वाले महीने, इनका एहतराम करना है, इनकी रिस्पेक्ट है। हदीस में आता है, सब महीनों का सरदार रमजान मुबारक है, और हुरमत में ज़िलहज्जा सबसे ज्यादा अजमत वाला है, यानी ये चार महीनों में भी ज़िलहज्जा सबसे ज्यादा अजमत वाला। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला के यहां सारे वक्त एक जैसे नहीं होते, सारे दिन एक जैसे नहीं होते, सारी रातें एक जैसी नहीं होती, सब दिनों का अलग अलग अल्लाह के यहां वैल्यू है। कोई ज्यादा बेहतर है, कोई ज्यादा बरकत वाला है, कोई ज्यादा अहमियत वाला है। और इस के पेशे नजर इनमें की गई नेकियां भी उसी मुताबिक अहमियत रखती हैं। आप देखें ना, क्या लैलतुल कदर और बाकी सारी रातें एक जैसी हैं? नहीं है ना, एक रात ऐसी है जो हजार महीनों से भी ज्यादा बेहतर, और बाकी रातें भी तो हैं लेकिन वो एक रात के ही बराबर है। इसी तरह ये कीमती दिन है, बाकी भी दिन है, लेकिन जो ये है ना वैसे वो नहीं हो सकते, वो इनकी बराबरी नहीं कर सकते। आप भले पढ़ते रहे उनके अंदर जितने भी नफल, वो ठीक है, नेकियां हैं वो, लेकिन वो कभी इक्वल नहीं हो सकती इसमें। इसीलिए तो मैं आपको कहती हूं कि एफर्ट ज्यादा करें, इसीलिए मैं आपको कहती हूं हिम्मत ज्यादा करें। तो इनमें, इन दिनों में नेकी का सवाब बढ़ जाता है, लेकिन याद रखिएगा साथ साथ गुनाह का वबाल भी बढ़ जाता है, गुनाह की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी संगीनी बढ़ जाती है। खुद सोचें, एक गुनाह कोई आम जगह पे करता है और वही गुनाह वो जाके मस्जिद में करता है, कोई फर्क है या नहीं दोनों में? है ना फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है। एक आम जगह है और एक वो है जो अल्लाह का घर कहलाता है, तो अल्लाह के घर का एहतराम है, अब वहां पे किया गया गुनाह ज्यादा बढ़ जाता है इंटेंसिटी में। इसी तरह एक है आम दिनों में गुनाह करना, और एक है इन खास अल्लाह के महबूब दिनों में गुनाह करना, जैसे कि ये अशरा ज़िलहज्जा है, या जैसे कि रमजान है। अब रमजान में फिर भी हम एक दूसरे को कह देते हैं, नहीं जी रमजान है, इस वक्त नहीं मैंने ये काम करना। कहते हैं ना लोग, रमजान है इसमें म्यूजिक बंद कर दो, रमजान है इसमें फिल्में बंद कर दो, रमजान है इसके अंदर ना झूठ बोलो, नहीं जी रमजान है तो इसलिए हम नहीं कर सकते। कुतुड़ो लोगों को एहसास होता ही है, लेकिन अशरा ज़िलहज्जा का कोई पता ही नहीं। जिस महीने को फरमाया कि सबसे ज्यादा अजमत वाला है, सबसे ज्यादा क्या कहेंगे अजमत को, किस तरह कि मतलब ऑनरेबल है, इसकी रिस्पेक्ट ड्यू है, इज्जत वाला है, उसकी हम ताजीम ही ना करें, हम इसको कोई वैल्यू ही ना दें। और इसकी ताजीम किसने दी है? मैंने, आपने, किसने? अल्लाह ने दी है। अल्लाह की दी हुई ताजीम को हम कुछ ना समझें, कोई हमारे लिए बड़ी बात ही ना हो, हम इसकी परवाह ही ना करें। तो हमें शर्म करनी है इन दिनों की, ठीक है, कि ये दिन बड़े अजमत वाले, इसमें मैं कैसे गुनाह करूं? बाकी दिनों में भी बुरा है गुनाह, ये नहीं कि आप बाकी दिनों में करें, मगर इन दिनों में जो अल्लाह ने जिनको इज्जत दी उनमें गुनाह करने से डरें, और ज्यादा अल्लाह की नाफरमानी करने से शर्माएं, ठीक है, और गुनाहों से दूर रहें। और खास तौर पे हमसे जो सबसे ज्यादा गुनाह होते हैं वो जुबान के होते हैं। और आपको हदीस से पता ही होगा कि एक बोल जो इंसान जुबान से निकालता है वो बाज दफा अल्लाह ताला को इतना बुरा लगता है कि वो जहन्नुम में उसकी वजह से इतनी अपने लिए नीचे डीप इतनी जगह बना लेता है, जानते कितने डिस्टेंस की। अब हमें, हमारे पास किलोमीटर हैं, माइल्स हैं, ये हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें नहीं बताया पैमाने, क्योंकि ये पैमाने बदलते रहेंगे, फरमाया इतने डिस्टेंस पे, मेरे ख्याल इसको तो हम मेजर भी नहीं कर सकते होंगे, जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान डिस्टेंस है ना, इतना वो जमीन, सॉरी, जहन्नुम के अंदर अपना ठिकाना बना लेता। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। तो फिर जुबान को कितना केयरफुली हमें यूज करना, कितनी एहतियात करनी है। तो कोशिश के साथ इन दिनों में अपनी जुबान को, हम सब, मैं आपको नहीं सिर्फ कह रही, मैं अपने आप को भी याद दहानी करा रही, हम अपनी जुबानों को कंट्रोल में रखें, झगड़े से परहेज करें, फालतू बहसों से खुद को बचा के रखें। ये ना हो कि हम इधर नेकियां कर रहे हैं, उधर साथ साथ अपनी नेकियों के ऊपर पानी फेरते जा रहे हैं। जैसे एक मिसाल कुरान पाक में आती है कि वो औरत जो सूत काटती है और उसके बाद उसको खुद ही उधेड़ देती है, अपनी सारी मेहनत को हम खुद ही ना बर्बाद करते हैं। तो अपनी जुबान को कम से कम बातें करें, नरम रखें, खास तौर पे किसी का दिल ना दुखाएं। इवन कई दफ़ा यंग बच्चों की मुझे ईमेल्स आती हैं कि हमारे वालदैन हमें इतनी हर्टफुल बातें कह देते हैं कि हमसे भुलाई नहीं जाती। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप ये ना समझें कि आपको अल्लाह ने खुली ही छुट्टी दी हुई है, जो मर्जी अपने बच्चों को कहते रहें, गालियां दें, उनको ताने दें, उनको हर्टफुल बातें करें, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। ऐसा नहीं है, ठीक है, किसी को अल्लाह ने फ्री हैंड नहीं दिया हुआ, चाहे आप वालदैन ही क्यों ना। तो इसके वक्त वैसे भी आम दिनों में भी करना है, लेकिन आजकल उदारा इवन, क्योंकि हम बच्चों के साथ ज़्यादातर डील करते हैं, सारा दिन उनके साथ होते हैं घरों में, और आजकल तो वैसे ही बच्चे घर पे हैं, तो बच्चों के साथ भी केयरफुली बात करें। छोटे बच्चे हैं तो उनके दिलों पे और उनके जिस्मों पे ज़रबे ना लगाएं और गीबतें ना करें, अपनी नेकियों के चर्चे ना करें, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, झूठ चुगली से बचें, एहसान ना जताएं, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया था, ये किया था। याद रखें, अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचा के ना कभी भी अल्लाह को हम खुश नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में फरमाया कि तुमने सदका भी करना है ना, तो वो सदका जिसके बाद तुमने एहसान चढ़ाना है दूसरे के ऊपर, उससे बेहतर है कि तुम ऐसा सदका ना ही करो, उससे बेहतर है तुम अच्छी कोई बात कर लो। तो इसका मतलब है एहसान चढ़ाना किसी के ऊपर, किसी को इस किस्म की बातों के ताने देना, किसी को बेइज्जत कर देना, या गुस्से में इतने ही भड़क गए कि गालियां देने शुरू कर दिए, आपे से बाहर ही हो गए हैं, इन चीज़ों से परहेज करें। किसी के साथ लड़ाई हुई भी है तो उसके साथ सुलह कर लें। आपको पता है ना, आज दो लोगों को माफ़ नहीं करता जिनमें झगड़ा हुआ होता, उनकी मगफिरत के बारे में फरमा दिया जाता है इनको छोड़ दो जब तक ये सुलह ना कर लें। तो फिर हमें भी ये ना, हमारी हमारी बुक अल्लाह के पास पहुंची हुई है और वो देखे और हम झगड़े में हैं किसी के साथ, सुलह कर लें, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, इज्जत नहीं घटती इससे, कुछ भी नहीं होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। ये किसने कहा? आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप मुझसे पूछें, आप कैसे कह सकती हैं ऐसे? आप समझती हैं कि हम इस तरह ही फालतू हैं कि हम जाके सुलह करते फिर? मैंने नहीं कहा, यह आपके नबी ने फरमाया, आपके नबी ने फरमाया, कसम खा के फरमाया, कि माफ कर देने से इंसान की भी इज्जत घटती नहीं है, जैसे सदका करने से माल कभी नहीं घटता। तो उम्मीद है आप लोग कोशिश कर रहे होंगे रोज़ा भी रखने की, उम्मीद है आप लोग कोशिशें और भी कर रहे होंगे। तो मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको रोज़े के बारे में एक बात बताऊंगी। तो वैसे तो उसको ज़रूरी नहीं, कोई फ़र्ज़ थोड़ी है ये रोज़े, लेकिन हम क्यों रखें फिर? अब एक बात होती है ना, क्यों रखें, कितनी गर्मी है, क्यों करें? तो असल में ना सारी इबादत के अंदर रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने एक ऐसी ख़ास बात फरमाई है कि जो इसको सारी इबादत में स्पेशल कर देता है। और वो क्या फरमाई? अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं बाकी सारी इबादत इब्ने आदम के लिए, मगर रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका अजर दूंगा। जब इंसान अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया ये बस मेरे लिए है, किसी और को नहीं, किसी और चीज़ का नहीं कहा, ना नमाज का कहा, ना हज का कहा, ना ज़कात का, किसी और चीज़ का नहीं कहा कि मेरे लिए, सिर्फ रोज़े का फरमाया रोज़ा मेरे लिए। मेरी प्यारी बहनों, ज़िंदगी का तो पता नहीं है कब का हो, लेकिन कभी इस ज़िंदगी में भी इंसान को ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि वो इन इबादत से, इतनी प्यारी इबादत से महरूम हो जाता है, नहीं रख पाता। तो गनीमत जाने अलग, अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी हुई है ना, वो छोड़ें गर्मी को, क्या गर्मी है, जब गर्मी लगेगी ना फिर कहना अल्लाह तेरे लिए प्यासी हूँ, अल्लाह तेरे लिए भूखी हूँ, मेरे फ्रिज में तो खाना भरा हुआ है, अल्लाह तेरी मोहब्बत में, फिर देखिए अल्लाह कैसे मेहरबान होता है। और दूसरी खुशखबरी क्या है? दूसरी खुशखबरी ये है कि हदीस में आता है, जो अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोजा रखता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नुम की आग से 70 साल की मुसाफत तक दूर कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग मेरे से पूछते हैं, इतनी ईमेल्स आती हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, इन दिनों में हम अपने फर्ज रोजे पूरे कर लें, कर लो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्या जब यही दिन आते हैं तो याद आता है फ़र्ज़ पूरे करने का? फ़र्ज तो बाकी दिनों में भी पूरा हो सकता है, हम क्यों नहीं ये हिर्स रखते कि हाँ हमेशा, मुझे ये चीज़ जो होती है ना, मुझे ये होता है कि फ़र्ज़ रोज़ों का तो मुझे पता है वो तो मेरे पर कर्ज है, वो तो मैंने अदा करना ही है, तो वो तो मैं बाकी दिनों में मेक श्योर करूंगी कि मैं उनको पूरे करूं, लेकिन इन दिनों में मैं नफली रोज़े इसलिए रखूं कि फिर नफली रोज़े रखने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ़र्ज़ रोज़े भी पूरे करने हैं और वो पहले ही कर लेने चाहिए, रमज़ान से भी बाद गुजरते ही फ़ौरन कोशिश करनी चाहिए, क्यों हम इतना डिले करें? लेकिन जब ये इतने प्यारे दिन आए उस वक्त हमें ये याद आ जाए कि अब हमने मिस रोज़े पूरे करने हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें नफली रोज़ों की भी एहतमाम करना चाहिए, उनका शौक करना चाहिए, ताकि हमारे जब साल भर के रोजे जमा हो ना तो फिर ज्यादा हो जाएंगे जाहिर है, वरना अगर हमने अभी फर्ज रख लिया ना सारा साल, देखना फिर नफली रोजों का मौका नहीं मिलना, फिर कहाँ हम रखते हैं। तो ये आज की थोड़ी सी बातें हो गई। आज का जो जिक्र है वो तीसरा कलमा है। तीसरा कलमा क्यों? इसलिए कि हदीस में आता है, कोई दिन अल्लाह की बारगाह में इन 10 दिनों से ज़्यादा अजमत वाले नहीं हैं, कोई दिन भी नहीं। यानी आप यू नेम इट, आप रमज़ान को समझते हैं ना, रमज़ान भी नहीं, यानी पूरे साल में हदीस में आता है कोई दिन है ही नहीं इससे ज़्यादा अजमत वाले, और ना ही किसी दिन का नेक अमल अल्लाह को इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। कैन यू इमेजिन, इसमें रमजान भी आ गया, इसमें मुहर्रम भी आ गया, इसमें जो दिन मर्जी आप कर लें, आपकी बर्थडे का दिन, आपकी फलां का दिन, आप सारे दिनों को आप स्पेशल समझते हैं ना, ये दिन मेरा स्पेशल, ये मेरी एनिवर्सरी, ये फलाने, ये फलां की, नहीं, कोई दिन अल्लाह को इतना महबूब है ही नहीं जितना इन दिनों के अमल अल्लाह को महबूब है। तो तुम इन 10 दिनों में, जैसे हमें बताया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको याद होगा अगर आपने हमारा प्रोग्राम सुना था, कि हम वो 10 दिनों में क्या सबसे ज्यादा दुआ करते थे, जब रमजान की 10 रातें थी उनमें सबसे ज्यादा क्या दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ना, है ना। इसी तरह इन 10 दिनों के बारे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज बता दी है ना, तो हम सबसे आगे उसको रखें, उसके बाद बाकी भी अज़कार हैं, लेकिन जब हमारे नबी ने बता दिया ना बस ये चीज कसरत से करो इन 10 दिनों में, जैसे वो दुआ बताई तो हम उस दुआ को और भी दुआएं मांगते थे, मगर सबसे ज्यादा हम उसको मांगते थे, हम सजदों में भी वो दुआ करते थे। ठीक है, اسی طرح ان 10 دنوں میں مانا اور بہت سے ذکر اذکار ہیں، لیکن جب میرے نبی نے سٹیمپ لگا دی کہ اور یہ فرما دیا کثرت سے یہ کرو، تو سب سے زیادہ ہمیں بس وہی ذکر کرنا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے کہو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. لا الہ الا اللہ کتنا بڑا ذکر ہے. آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ تو ایسا ذکر ہے کہ اگر میزان ہو نا ایک، اور اس کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان سارے کے سارے رکھ دیے جائیں، تو لا الہ الا اللہ وزنی ہوگا. اور قیامت کے دن بھی ایک آدمی کے لیے اتنے رجسٹر ہوں گے، اتنے حد نگاہ تک اس کے گناہوں کے رجسٹر ہوں گے، وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے. وہ کہے گا اب میں مر گیا، اب میرا نہیں کچھ بچنا. تو اس کا کہا جائے گا اچھا ایک چیز اس کی رہ گئی ہے. وہ کہے گا اب کون سی چیز ان کے اس کے برابر یا اس کو ہلکا کر سکتی ہے ان میرے گناہوں کو. تو ایک پرچی لائی جائے گی اور اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا ان سارے گناہوں کے مقابلے میں. اور وہ ہے جب انسان سچے دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میری زندگی میں کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں جس کی میں عبادت کروں، جس کے آگے میں جھکوں، جس سے میں دعائیں کروں، جس کی میں نظر مانوں، جس کی میں منتیں مانوں، جس کے لیے میں قربانی کروں، جس کے لیے میری زندگی ہو، کوئی اور اس لائق ہی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ ہمارے دل کی پکار بن جائے، یہ وہ کلمہ ہے پھر جو دل سے نکلتا ہے، تو پھر یہ اتنا وزنی ہے. اور لا الہ الا اللہ کہتے رہیں اور سجدے جا کے آپ مزاروں پہ کریں، ہاں لا الہ الا اللہ کہتے رہیں اور امیدیں آپ کی کسی اوروں سے ہوں کہ یہاں سے مجھے ملے گا، لا الہ الا اللہ کہتے رہے اور آپ کا قبلہ اللہ کا قبلہ نہ ہو بلکہ کوئی اور ہی چیزیں اپنے قبلے بنائے ہوں، آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہو اور دل کے اندر بت کھڑے کیے ہیں پیسے کے، مادیت کے، مادہ پرستی کے بت، یہ ان کی پوجا کرتے ہو آپ مٹیریل کی اور مال کی، تو وہ لا الہ الا اللہ کیا ہوا پھر؟ پھر تو بس وہ ہی ہے کہ طوطے کو بھی رٹا دیا لا الہ الا اللہ تو وہ بھی پڑھتا رہے گا. تو ہم ناری یہ جب پڑھیں تو یہ ساتھ دل میں ایک تمنا رکھیں کہ یا اللہ جب میرا آخری وقت بھی ہو نا تو میری زبان پہ اس کو جاری کر دینا، کیونکہ وہ بڑا مشکل وقت ہے. اس وقت زبان سے اسی کے نکلے گا جو اس کلمے کو کہتا رہا ہوگا اور سچے دل سے کہتا رہا ہوگا، اور اللہ کی مدد سے ہی نکلتا ہے. ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا کلمہ اس ٹائم پہ، وہ بڑا مشکل وقت ہے. دیکھیں آپ اس سے امیجن کریں، اچھا دنیا میں ذرا سا کوئی چیز ہو جائے، کہیں سے آپ جا رہے تھے ایک دم سے کوئی اچانک دھمکا ہو جائے اور کیا منہ سے نکلتا ہے، یا کوئی ایک دم حادثہ ہو جائے کیا منہ سے نکلتا ہے، یا لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، یا کچھ ایسی چیز نکلتی ہے، یا اللہ کا کوئی ذکر نکلتا ہے، تو اس وقت جو سب سے بڑا حادثہ ہے، جو سب سے بڑی مصیبت ہے، اس وقت آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہاں جی اچانک اس وقت معجزہ ہو جائے گا لا الہ الا اللہ نکل آئے گا؟ نہیں، اس کو زبان پہ رکھیں اور دل سے پڑھیں. وہ دیکھیں ہم، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی بھی ہے کہ ایک عالم صاحب تھے، ان کو کسی نے، ان کے کسی شاگرد نے ان کو ایک طوطا، بولنے والا طوطا جو ہے نا، ان کو گفٹ دیا. انہوں نے اس طوطے کو لا الہ الا اللہ سکھا دیا. ایک دن کیا ہوا، ایک بلی آئی اور وہ طوطے کو کھا گئی. وہ طوطا نا سارا وقت وہ لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائے رکھتا تھا، بولنے والا طوطا تھا، سارا دن لا الہ الا اللہ کہتا رہتا تھا، سارا دن لا الہ الا اللہ کہتا رہتا. ایک دن بلی نے اس کو دبوچ لیا، ختم کر دیا. تو ان کے شاگرد جب اگلے دن آئے تو دیکھا اتنا رو رہے تھے. انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بھائی طوطا ان کا اس طرح سے بلی نے کھا لیا. انہوں نے کہا ہم آپ کو 10 طوطے لا کے دے دیتے، آپ کیوں اتنا غم کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا کہ مجھے طوطے کے جانے کا نہیں غم، میں اس کے اوپر نہیں رو رہا، میں اس پہ رو رہا ہوں کہ وہ طوطا دن رات لا الہ الا اللہ کی گردان لگائے رکھتا تھا، لیکن جب بلی نے اس کو دبوچا تو سوائے ٹائیں ٹائیں کے اس کی زبان پہ کچھ نہیں تھا. उसको ला इलाहा इल्लल्लाह ही भूल गया। वो तो सारा दिन बोलता था, क्यों भूल गया? इसलिए कि वो दिल से थोड़ी कहता था, उसकी तो जुबान पे कलमा था बस, वो कहता रहा। तो हमारे भी जुबान पे कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह तोते की तरह ना हो, वाकई दिल से हो, वाकई दिल से हो। इसी तरह अल्लाह अकबर कितना बड़ा कलमा है। अल्लाह को अकबर बना लेना जिंदगी में, कोई और अकबर नहीं है, कोई दुश्मन अकबर नहीं है, कोई मुखालिफ मेरा कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर है, मैं क्यों उसे डरूं? अल्लाह अकबर है, मैं क्यों लोगों की बातों से डरूं? अल्लाह अकबर है, लोगों की बातें अकबर नहीं है, फैशन अकबर नहीं है, पैसा अकबर नहीं है, ये रिवाज अकबर नहीं है, मेरी जॉब और मेरा बॉस अकबर नहीं है, अल्लाह अकबर है। जिंदगी में भी अल्लाह को अकबर करना है। हाँ, ये नहीं करना कि अल्लाह अकबर कहते रहे, लेकिन जब जिंदगी के मामलात आए तो मेरे बच्चे ये कहते हैं, मेरा हस्बैंड ये कहता है, मेरे फ्रेंड्स ये कहती हैं, मेरा खानदान ये कहता है, फिर सब अकबर बन जाते हैं और अल्लाह तो कहीं भूल ही जाता है, वो तो याद भी नहीं रहता। तो वो कैसा अकबर हुआ फिर? इस तरह आज की जो दुआ है, इतनी प्यारी जामे दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दी है ना, कि उन दुआओं का मुकाबला और कोई दुआएं कर ही नहीं सकती। हम जितनी मर्जी सोचें, हम लंबी लंबी दुआएं करती हैं, वो एक दुआ उन सारी दुआओं के लिए काफ़ी हो जाती है। जो हम लंबी लिस्ट करते हैं ना, उसके लिए एक ही काफ़ी हो जाती है। एक तो मैं आप सबको कहूँगी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना, ये भी हम कसरत से मांगें। हम इसी तरह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, बहुत कसरत से ये दुआ मांगें, क्योंकि आज मैंने जहन्नुम के कुछ वाक़यात उसमें सूरह दुखान पढ़ रही थी, तो उसके अंदर उसकी तिलावत में आए थे। अगर आप भी देखना चाहें तो उसके एंड में है कि ऐसा जहन्नमियों का खाना जक्कूम होगा, और कैसे उनके सरों को फाड़ के उसके अंदर ऐसा पिघला हुआ तांबा डाला जाएगा जिससे सारे उनका जिस्म पिघल जाएगा, सारे उनके अज़ा पिघल जाएंगे। क्या वो तांबा होगा, कितने टेम्परेचर पे पिघलाया जाएगा, क्या उसका हाल होगा, और क्या इंसान का हाल होगा जिसकी खोपड़ी खोल के डाल दिया जाए। तो इतना डर लगा। उसके बाद जन्नत के वाकयात भी आए, लेकिन यही सोच रही थी, अल्लाह बस हम जहन्नुम से बच जाए ना, यही हमारी कामयाबी है। और अल्लाह ताला ने खुद भी फरमाया, फमन जुहसिया अनिन्नार व उदखिल अलजन्नत वकद फाज, जो जहन्नुम से बच के और जन्नत में दाखिल हो गया बस वो कामयाब है। तो सबसे ज्यादा हमारी फिक्र ये होनी चाहिए, अल्लाह जहन्नुम से बचा लेना, अल्लाह उसका झोंका भी हमें ना लगे। तो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, चूंकि छोटी छोटी दुआएं है ना, आप सबको आती ही होंगी, तो मेंशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए ही आपको सिर्फ ज़ुबानी ही बता देती हूँ। तो लेकिन जो शायद ना आती हो, वो फिर मैं आपके साथ अभी शेयर करती। वो ये दुआ है जो मैं आपको कह रही हूँ ना, बहुत जामे दुआ, कुर्बान जाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी उम्मत की खैर के लिए कितनी प्यारी दुआएं सिखा दी। अल्लाहुम्मा, मेरे साथ पढ़ें, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, इन्नी असअलुका, मैं तुझसे, बेशक मैं तुझसे सवाल करती हूँ, मिनल खैरी, खैर में से, कुल्ली ही, सारी की सारी खैर का सवाल करती हूँ अल्लाह, आजिली ही व आजिली, अल्लाह जल्दी मिलने वाली, उजलत होती है ना जल्दबाजी, उजलत में कहते हैं काम ना करो, व आजिली और देर से मिलने वाली, मतलब क्या जल्दी मिलने वाली क्या है? दुनिया, दुनिया की खैर, दुनिया की खैर में क्या है? सेहत है, रिज्क है, औलाद है, नेक नामी है, ईमान है, इज्जत है, दीन की समझ है, ये सारी खैर ही है ना, सब खैर है। बच्चों की दीन पे चलना है, दीनदारी है, ये सब खैर है। तो अल्लाह मैं तुझसे सारी खैर का सवाल करती हूँ, कुल्ली ही, मा आलिम तो मिन हूँ व मा लम आलम, जिसको मैं जानती हूँ और जिसको नहीं जानती। आपको पता है हमें तो खैर का भी थोड़ी सी का पता है, हमें बहुत सारी खैर का तो हमें खुद ही नहीं पता कि हमें कौन सी खैर मांगनी चाहिए अपने लिए। तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने देखे आप बोले हैं, मैंने चंद चीज़ें बोल दी, अब शायद मेरे जहन में यही हूँ, इसी तरह आपके जहन में भी खैर के नाम पे कुछ चीज़ें होंगी, बहुत भी सोचें तो कुछ ही चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर देंगे जो खैर की हैं, जो हमारे जहन में ही नहीं होती। तो जब ये दुआ की तो इसमें सब कुछ आ गया, अल्लाह जो मैं जानती हूँ और जो मैं नहीं जानती, वाउज भी क्या, और अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ किस चीज़ से, मीन शर्री कुल्ली ही, हर किस्म के शर से अल्लाह, हर किस्म की बुराई से, आजली व आजली, दुनिया में भी और जो आखरत की भी है। अब दुनिया की क्या है बुराई? दुनिया की बुराई बीमारियां हैं, फितने हैं, बदनामियां हैं, जेल है, और इस जेल के अंदर कैद हो जाना है, फिर उसके बाद और नुकसानात हैं, और ईमान का चले जाना, और फितना दज्जाल, और किस हर किस्म के फितने, और ये सारी चीज़ें, परेशानियां, मसाइल, ये सब दुनिया की शर है। इन सब से अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ। वह आज ली, और आखरत की भी, आखरत के शर क्या क्या है? अब आखरत का शर है हशर के मैदान की परेशानियां, और मीजान के अंदर गुनाहों का बढ़ जाना, ये भी एक शर है। सख्त हिसाब हो जाना, ये भी एक शर है। पुल सिरात के ऊपर गिरते पड़ना, ये भी एक शर है। नूर का बुझ जाना, ये भी एक शर है। और जब हम ये, मैंने आपको बताना भूल गई कि खैर जो आज ली है, आखरत की खैर क्या है? क्या आसान हिसाब हो जाए, पुल से रास्ते तेजी से गुजर जाए, जरा भी वहां पे मुश्किल ना हो, हवा की तेजी से चले जाए, जन्नत में एंटर हो जाए बगैर किसी मुसीबत के, बगैर किसी परेशानी के। और क्या खैर है कि अर्श का साया मिल जाए, हौज़े कौसर का पानी मिल जाए, और अल्लाह ताला का दीदार मिल जाए, सभी तो खैर है। ये तो सारा कुछ मांग लिया, मा आलिम तो मिन हूँ मालम आलम। तो शर भी बहुत सारी शर हमें तो पता ही नहीं। अल्लाह, आखरत में कब्र भी आ जाती है, आखरत शुरू हो जाती जब कब्र होती। तो जो कब्र के अंदर जितनी सारे मसाइल हैं, पता नहीं हमें कईयों चीज़ों का तो पता भी नहीं होगा, वो तो जो चखेगा ही जाके वो उसी को पता होगा। तो अल्लाह, जो मुझे नहीं भी पता ना, और जो मुझे पता है, मुनकर नकीर के सवाल जवाब, और जो कब्र की सख्तियां हैं, और जो सा, अल्लाह ताला सबसे अपनी पनाह में ले लेना। कितनी प्यारी दुआ है। तो एक दफ़ा दोबारा इस दुआ को करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिली, मा अलिमतु मिन्हु व मा लम आलम, व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिही आजिलिही वह आजिली। एक आइन के साथ है पहला, उजलत वाला, और एक अलिफ के साथ है। मा अलिम तु मिन हो वह मा लम आलम। ठीक है, आपको ये मिल भी जाएगी इंशाल्लाह स्लाइड्स में, तो आप इस दुआ को भी शामिल कर सकती हैं। और एक दफा हम दोबारा तस्बीह कर लेते हैं अपनी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह ही والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر। लेकिन सुबहान अल्लाह में भी अल्लाह ताला को हर ऐब से पाक करार दे देना, हर कमी, हर ऐब, हर कमजोरी, हर बुराई, हर ऐसी चीज जो उसकी शान के लायक नहीं है, उससे वो पाक है। सुबहान का ये मतलब है। इसी वजह से उलमा कहते हैं कि कोई अपना नाम सुबहान ना रखे, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह के लिए लायक है, वो ही सिर्फ ऐसे हो सकता है, बाकी तो कोई इंसान नहीं हो सकता कि हर ऐब से ही पाक हो, हर कमजोरी से ही पाक हो। तो जब सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, ये हदीस में आता है, ये इतने जबरदस्त कलमे हैं, ये आपको कहने में कोई जोर तो नहीं लगा? नहीं लगा ना सुबहान को, लेकिन ये इतने जबरदस्त कलमे हैं सुबहान अल्लाह के, ये जमीन और आसमान के दरमियान कितना खला है बताएं। मेरे ख्याल हमें और आप तो इसको पैमाइश ही नहीं कर सकते। फरमाइए, सारा भर जाता है जब कोई इंसान कहता है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। देखिए कितने हल्के हैं ये जुबान पे ये कलिमात, लेकिन अजर कितने बड़े हैं। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। तो इनको अपनी जुबान पे जारी रखना है इंशाल्लाह ताला, जिंदगी रही तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, एक नए प्रोग्राम के साथ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।